आप सब लोगों का क्या गया? मैं कोई शादी नहीं करने वाला। उसकी डैड ने अपनी पॉकेट से चाबियां निकाली। ये तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारे लिए पेंट हाउस तैयार करवाया है मैंने। तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, चाहे वहां पर, बस तुम हमसे कभी कभी मिलने आ जाया करो। बिजनेस देखना स्टार्ट करो। आपको कैसे पता? आप तो मेरी मन की हर बात बिना कहे ही जान लेते हैं। उसकी डैड उसे आज़ादी दे रहे थे। बलवंत की बात पर पूरी फैमिली एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उन्हें उम्मीद थी कि जहां पर नहीं रहेगा और इंडिया का बिजनेस कभी नहीं संभालेगा। देखिए भाई साहब, फिर तो सभी बच्चे अलग रहना चाहेंगे, रमेश ने कहा। आप गलत रवायत डाल रहे हैं। किसके पास क्या है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पैसों से बनवाकर दे रहा हूँ पेंट हाउस। फ्लैट तो सभी के पास है और उन फ्लैट्स में क्या करते हैं मुझे पता है, और जो कोई जहां रहना चाहता है चाहे रह सकता है। मैं किसी को नहीं रोका, कहते हुए बलवंत अपनी जगह से उठ गया। ये बात सच थी कि अगर सभी साथ थे तो लालच की वजह से सबसे ज्यादा शेयर्स बलवंत के पास थे और अब उसके बाद वेद के पास। वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे और आज़ादी सभी को चाहिए थी, तो सभी ने अपनी आयाशी के अड्डे बनाए हुए थे। ऐसा नहीं था कि घर की औरतों को मर्दों के बारे में पता नहीं था, मगर उन्हें अपनी आज़ादी चाहिए थी, तो चुपचाप सभी एक दूसरे को सहन कर रहे थे। जैसे ही शाम हुई उसने गाड़ी की चाबी उठाई और वो घर से बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। मॉम, मैं जा रहा हूँ, वेद कहने लगा। ठीक है, खाने तक आ जाओगे? मॉम, मैं किसी दोस्त के पास रहूंगा, इसलिए रात के खाने पर मेरा इंतजार मत करना, कहते हुए वो बाहर निकल गया था। उसे जाते हुए उसकी मॉम सोचने लगी। क्या हुआ? बलवंत ने उसे ऐसा सोचते देखकर पूछा। मुझे डर लगता है इससे। और आपने भी इसे पेंट हाउस गिफ्ट किया है, खुद ही अलग रहने की इजाज़त दे दी। तुम अच्छे से जानती हो अगर हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हमें छोड़कर चला जाएगा, मगर आज़ादी तो हमें देनी है। अगर सच कहूँ तो ये मेरे जैसा है, जैसा मैं था जवानी था। तुम मुझे मिली तो मैं बदल गया। कोई ऐसी लड़की इसकी ज़िंदगी में आ जाए जो इसकी ज़िंदगी को बांध दे। जब तक वो इसे नहीं मिलती ये ऐसे ही भागता रहेगा। पता है मुझे ये किसी रात को किसी लड़की के साथ होगा, मगर कोई फ़ायदा नहीं। रोकने में जो करता है करने दो। जब इसकी तकदीर में वो लड़की आएगी तो वो खुद अपनी तकदीर बदलेगा। उम्मीद करती हूँ इसकी लाइफ में वो लड़की जल्दी से आ जाए। आज वेद सीधा एक क्लब में पहुंचा। वहां पर एक उसका एक दोस्त इंतजार कर रहा। बहुत सालों के बाद इंडिया आए हो, अच्छा है अब हम मिला करेंगे, उसके दोस्त मलिक ने कहा। मिलते तो पहले भी थे, वो दोनों बार काउंटर पर बैठ गए थे और एक ड्रिंक करने लगे थे। अब साल में एक बार मिलना थोड़ी कोई मिलना होता है, उसने कहा। वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे कि वेद की नज़र उस क्लब के अंदर आती ही लड़की पर गई, जिसने रेड कलर की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी। बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस, आगे से डीप गला, बेहद हॉट एंड सेक्सी लड़की थी वो। वेद उसे लगातार घूरता रहा। कौन है ये? वेद ने कहा। आहूजा खानदान की राजकुमारी है, लाडली बेटी। बाप का काफी बड़ा बिजनेस है और क्लब में अक्सर आती है। नखरा इसका ऊंचा है, किसी की तरफ देखती भी नहीं। मुझे ऐसी ही चीज पसंद है, जिनका नखरा थोड़ा ऊंचा हो उनका उतना ही मजा आता है उनके साथ। क्या सोच रहा है? तुम्हारा इरादा ठीक नहीं लग रहा, मलिक ने हंसते हुए कहा। कोई तो चाहिए मुझे जहां पर, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो आज इसी से काम चला लेंगे। क्या सोच रहे हो? मलिक ने मुस्कुराते हुए वेद से पूछा। मुझे लगता है ये लड़की यहीं पर है और मुझे उससे बात करनी चाहिए। कोई तो चाहिए जो मुझे समझे, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मलिक ने मजाक में कहा। तुम्हारा इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा। वेद हल्की मुस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ। जिस लड़की पर उसकी नज़र थी वो पास खड़ी कुछ दोस्तों से बात कर रही थी। वेद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और जानबूझकर अपनी बाह उससे टकरा दी। उसके हाथ में पकड़ा ग्लास झटका खा गया और थोड़ा सा वाइन उसके कपड़ों पर गिर गया। ओह सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, वेद तुरंत बोला। कोई बात नहीं, लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने भी वेद को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आत्मविश्वासी पर्सनालिटी और गहरे नैन नक्श पर वो भी अनजाने में आकर्षित हो गई। मैंने आपको इस क्लब में पहले नहीं देखा, लड़की ने बातचीत शुरू की। मैं 5 साल बाद इंडिया लौटा हूँ, वेद ने सहजता से कहा, और आते ही आप जैसी खूबसूरत लड़की से टकरा गया। लगता है किस्मत मुझ पर मेहरबान है। आपके कपड़े तो गंदे हो गए हैं, यही होटल में मेरा कमरा है, अगर चाहें तो चलकर साफ कर लीजिए, वेद ने ऑफर दिया। लड़की ने थोड़ी झिझक के बाद मुस्कुराकर हामी भरी। ठीक है। कमरे में पहुंचने के बाद वेद ने कहा, मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा, आप ही बताइए पहले, लड़की ने चुटकी ली। वेद, वेद मेहरा, मैं शनाया हूँ, लड़की ने कहा और वॉशरूम की ओर बढ़ गई। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, वेद ने मजाक में कहा। आप मदद करेंगे? उसने मुस्कुरा दी। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। नजरों में नजरों की बातें होने लगीं। जब वो वापस आई तो माहौल और भी करीबियों से भर चुका था। मैं ये ड्रेस बदल लेती हूँ, उसने कहा। अगर चाहो तो मैं साफ करवा दूँ, वेद ने धीरे से कहा। आर्या ने एक पल उसे देखा और मुस्कुरा दी। उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। वेद ने उसके चेहरे को हल्के से थामा, उसकी आंखों में देखते हुए उसके बेहद करीब आ गया। हवा में एक अजीब सी धड़कन गूंज रही थी। आर्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या सोच रहे हो? तुम्हें समझाऊं या महसूस कराऊं? वेद की आवाज़ भारी हो गई थी। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगी। उस रात उन्होंने एक दूसरे की मौजूदगी को गहराई से महसूस किया। कमरे में सन्नाटा था, बस दिलों की धड़कने और सांसों की आवाज गूंज रही थी। दोनों एक दूसरे में खो चुके थे, मानो दुनिया का हर शोर उनसे दूर हो गया हो। काफी देर बाद जब सब थमसा गया, शनाया ने हल्की थकी मुस्कान के साथ कहा, मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। वेद ने उसकी ओर देखा और धीरे से उसके हाथ थाम लिए। शायद किस्मत हमें इसी रात मिलवाना चाहती थी। जब सुबह उस लड़की की आंख खुली, वो वहां से जा चुका था। मैंने तो उसका नंबर भी नहीं लिया, उस लड़की ने सोचा। चलो कोई बात नहीं, इसी क्लब में फिर मिल जाएगा। वो वेद से बार बार मिलना चाहती थी। भाई, आप सुबह आए हो? डाइनिंग टेबल वेदांत ने पूछा। हाँ, बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। आकर तैयार होकर सीधा जहां आ गया, वेद ने साफ साफ कहा। आज ऑफिस जाना है? आज वो अपने डैड के साथ ऑफिस ज्वाइन करने वाला था। कितने सालों बाद इंडिया आया था। तुम इतने सालों के बाद वापस आए हो, तुम्हें बाहर की जगह घर रहना चाहिए, उसके चाचा ब्रिजेश ने कहा। छोड़ो इस बात को, सभी जल्दी करो, ऑफिस जाना है, बलवंत मेहरा ने उस बात को खत्म किया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे अपने बेटे के बारे में पता नहीं था। क्योंकि वेद बहुत सालों के बाद इंडिया आया था, इसलिए बलवंत की पूरी नजर उस पर थी। वो नहीं चाहता था उसका बेटा किसी खतरे में पड़े, और वो ये भी जानता था कि बंदिशे में वेद को रखना नामुमकिन है। अगर उसने वेद पर सख्ती करने की कोशिश की तो वापस चला जाएगा। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, चलिए ऑफिस चलते हैं, वेद अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बोला। तुम लोग भी ऑफिस आ जाना, मैं वेद को कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर जा रहा हूँ, हम लोग सीधे वहीं से ऑफिस पहुंच जाएंगे, बलवंत ने कहा। ठीक है, आप जाइए, ना चाहते हुए भी ब्रिजेश बोला। क्या कोई ऐसा आएगा जो वेद की आयाशियों को बंद कर देगा?
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और भेजना याद रखें।